नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव 9 सितंबर से होंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी।
पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसद में बिहार में मतदाता सूची विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बिहार में मतदाता सूची 2025 का मसौदा आज सभी 48 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ साझा किया गया। इस प्रारंभिक अस्थायी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम शामिल करने और हटाने के दावे 1 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग इस सूची का बाद में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के बाद कांग्रेस ने देश में भगवा आतंकवाद का झूठा प्रचार करने की कोशिश की थी। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पात्रा ने कहा कि ऐसा पूरी तरह से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया था। बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने आज जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। हसन जिले में उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के 4 मामलों में से यह एक है। अपर नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने आज दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में फैसला सुनाया। प्रज्वल रेवन्या को इन सभी आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया है। अपराध के लिए सजा कल सुनाई जा सकती है। प्रज्वल रेवन्ना जद एस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का पौत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT ISM धनबाद के स्नातक विद्यार्थियों से कहा है कि वे 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएं। राष्ट्रपति ने आज झारखंड की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनन विद्यापीठ धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो।
इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव कुमार भी उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं का स्रोत पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रणनीतिक आकलन से निर्धारित होता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज रक्षा खरीद के बारे में नई दिल्ली में यह बात कही। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के नए नियम लागू कर दिए हैं। प्रत्येक UPI ऐप उपयोगकर्ताओं को दिन में 50 बार अपने खाते में जमा राशि देखने की सुविधा देगा। ओवल में भारत के साथ 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 75 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।